सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो नमो लोए सवसाहुणं सुर असुर नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मिनमो सुदकेवली भणिदम्। ये समय सार है और यहाँ कुंद आचार्य का जो कर्ता कर्म अधिकार उन्होंने जो लिखा है इस समय सार में उसके गाथा नंबर 90 को हम देख रहे हैं। यहाँ ये बात चल रही है कि जो जीव भाव करता है परिणाम करता है उसका वह करता है। जो ये हमने 2-3 कलश 50-51 नंबर के कलश से हम देखते आए हैं वहाँ वही बात चल रही थी। तो यहाँ पर ये बताते हैं ये 3 प्रकार के जो विकार परिणाम जो चल रहे हैं उसका कर्ता आत्मा स्वयं है। और इस बात को बताते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर आए हैं। आखिरी पैराग्राफ है, कोई माने के कर्मनु जोर छे तो विकार करवो पड़े तो ते मान्यता बराबर नथी। जीव ने विकार थाय छे एबा निमित्तनु बिल्कुल कर्तापणु नथी। कहे छे ने के अनादि थी अन्य वस्तुभूत मोह साथे संयुक्त पनाने लीधे पोतानामा उत्पन्न थता जे आ त्रण मिथ्यादर्शन अज्ञान अने अविरती भावरूप परिणाम विकारो तेना निमित्ते उपयोगो। त्रण प्रकारे थईने पोते अज्ञानी थयो थको कर्तापनाने पामे छे। विकार रूप परिणमी ने जे भाव ने पोतानो करे छे ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। आहा परमार्थती तो त्रिकाणी उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन छे ते वस्तुना सर्वस्व भूत छे अने चैतन्य मात्र पना चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकारनो छे तोपन अशुद्ध सांजन अनेक भावपना ने पामतो थको त्रण प्रकारनो थईने पोते अज्ञानी थयो थको कर्तापना ने पामे छे। जो कर्म एटले निमित्त विकार करावे छे एम नथी, विकारनो करता जड़ कर्म छे एम नथी। देखो यहाँ पर देखो पहले हमने देखा था कि जो राग परिणाम है वो पौद्गलिक है, पुद्गल उसका करता है, वो बात इसी समय सार में लिखी है। वहाँ तो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की तरफ इस जीव की दृष्टि केंद्रित हो इस अपेक्षा से वहाँ कथन था। अभी यहाँ पर 2 द्रव्यों में भिन्नता है, कोई अन्य द्रव्य का कार्य करे ऐसा वस्तु स्वभाव नहीं है, ये बात बताने के लिए यानी इस जीव के पर पदार्थों से दृष्टि हटकर अपने स्वतरफ जाए और यहाँ जो विकारी परिणाम हो रहे हैं वो पर के निमित्त से नहीं हो रहे, मेरे स्वयं के अपराध से हो रहे हैं, इस बात की विशेष मालूमात कराने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं 4th लाइन में, जो कर्म अथवा के निमित्त विकार करावे छे एम नथी, विकारनो करता जड़ कर्म छे एम नथी, विकार रूप परिणमी ने जे जे भाव ने पोताना करे छे ते ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। मिथ्या दृष्टि कर्तापना ने पामी ने जे जे भाव ने पोताना करे छे ते ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। जड़ कर्म करता थाय छे एम नथी। कर्म निमित्त हो निमित्तनी कोने ना पाड़ी छे पण निमित्तना कारणे जीवने पर्यायमां विकार थयो छे एम नथी। स्वयं अज्ञानी थईने उपयोग विकारी भावनो करता थाय छे। उपयोग स्वयं पोताना कारणे अज्ञानी थईने विकार उपरिणमीने ते ते भावनो करता थाय छे। ये मूल बात इस कथा में हमको बता रहे। आवी वात छे कोई ठेकाने व्यवहारनुं कथन आवे पण त्या व्यवहारनुं ज्ञान करायवुं छे एम समजवुं व्यवहार निश्चयनो करता छे एम न समजवुं। यानी क्या कहते हैं राग भाव से धर्म होगा ऐसा निमित्त से कहते हैं लेकिन वह तो व्यवहार का ध्यान कराने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो व्यवहार निश्चय नु करता छे एम न समझो यानी राग से ही धर्म होता है शुभ भाव से ही धर्म होता है ऐसा मत समझना। कर्मती विकार थाय छे ए मोटी गड़बड़ अत्यारे चाले छे पन ए वात तद्दन खोटी छे एम अहीं सिद्ध करे छे। यानी ये परद्रव्य हो गया ना कर्ता अपना कर्म तो उससे इस जीव के परिणाम मिथ्या रूप परिणाम ऐसी बात नहीं है। मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति भाव रूप विकारी परिणाम नो स्वयं अज्ञानी थईने उपयोग करता थाय छे। देखो यहाँ उपयोग यानी यहाँ आत्मा कहने में आ रहा है क्योंकि हमने देखा है कि आत्मा स्वयं ज्ञानमय है। उपयोग का अर्थ उसमें तो ज्ञान दर्शन दोनों ही होता है लेकिन विशेष रूप से तो आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। इस दोनों को यहाँ पर्याय को भी आत्मा ही कहकर उसको तीन प्रकार से वो विकार रूप परिणमता है ऐसा बता रहे। हाँ ले सकते ज्ञान पर्याय ही विकारी हो रही है ऐसा समझेंगे यानी आत्मा ही विकारी हो रहा है।
अकेले ज्ञान को नहीं लेना है वहां उपयोगमयी आत्मा ऐसा लेना। उपयोग आत्मा का लक्षण है तो आत्मा त्रिविध रूप हो रहा है। हमने पहले देखा था प्रवचन सार में भी आत्मा क्रोध है आत्मा मान है जब उस समय तो यहाँ उपयोगमयी आत्मा उस रूप हो रहा है ऐसा लेना।
इस बात को मैंने पहले बताया था कल
जैसे नाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है यहाँ सॉरी जैसे नाचार्य की टीका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण होने से ये लक्षण किसका है आत्मा का। आत्मा तीन प्रकार का हो रहा है उपयोगमयी आत्मा तीन प्रकार का हो रहा है। लिखा तो उपयोग है परंतु समझना वहां आत्मा क्योंकि ये लक्षण आत्मा का है तो उपयोग कहो ज्ञान कहो आत्मा कहो एक ही बात है। अकेले ज्ञान गुण को और ज्ञान के पर्याय को नहीं पकड़ना वहां।
देखो मैंने कल आपसे यही बात की थी और मैंने आपको पूछा था आपको यानी सबको कि उपयोग और लक्षणम ये तत्वार सूत्र में बात बताई है कि नहीं ये भी बात बताई। फिर आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ऐसा भी हमने कलश के माध्यम से देखा था। यानी यहाँ ज्ञान यानी आत्मा ये बात सिद्ध कर रहे हैं तो ये हमको तो उपयोग कहने से सिर्फ ज्ञान की पर्याय इसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। वह तो आत्मा स्वयं ही तीन रूप से परिणमित हो रहा है और वैसे हम दूसरी अपेक्षा से भी देखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए तो एक द्रव्य में कितने गुण हैं तो अनंत गुण हैं तो जीव में भी यानी आत्मा में भी अनंत गुण हैं तो उस गुण की अपेक्षा से उसमय आत्मा है। आत्मा कैसा है तो सुखमय है। आत्मा कैसा है तो ज्ञानमय है। आत्मा कैसा है तो वितरागतामय है। इस तरह एक गुण की माध्यम से या उस रूप पर्याय के माध्यम से पूरे आत्मा को हम पकड़ते हैं तो एक समय में अनंतमय है ऐसा ले लो, यानी एक एक की अपेक्षा से। वैसे यहाँ उपयोग को ही आत्मा कहा है और यह आत्मा ही तीन प्रकार से मिथ्या रूप से परिणमित हो रहा है, यानी मिथ्या दर्शन कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, मिथ्या चारित्र कहो। कहाँ आए थे मैंने? कर्म थी विकार थाय छे, ए मोटी गड़बड़ चाले छे, यहाँ आए थे हम, पण ए वात तद्दन खोटी छे, एम अहीं सिद्ध करे छे। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव रूप विकारी परिणाम नो स्वयं अज्ञानी थईने उपयोग करता थाय छे, एटले आत्मा स्वयं करता थाय छे। अन्य मत वाला कहे छे के जगतना कार्यनो ईश्वर करता छे, अने कोई अज्ञानी एम कहे छे के मारा संसार अने विकारनो करता जड़ कर्म छे, तो आ बन्नेनी मान्यता एक सरखी छे ने झूठी छे। तो एक सरखी झूठी छे, अने दोनों में समानता क्या है? हाँ पिनांग भाई, दोनों में समानता क्या है? झूठी मान्यता ये तो समानता है, तो क्या समानता है? हाँ, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, वह ईश्वर करता मान रहे हैं। यहाँ कर्म हमको कौन जैनी, जड़ कर्म हमको रुलाता है, सुलाता है, जो कुछ है। हाँ भाई, जिसने आत्मानुभव नहीं किया है वो जैनी कहलाएगा क्या? नहीं ना। आई आ दिगंबर संतोनी जे वाणी छे ते परम सत्य छे। नियम सारमा टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव कहे छे के मारा मुखमाती परमागम झरे छे। आहा, आवी सत्यवात कोई ने न रुचे तो शू थाय, पन सत्य तो आज छे। यानी वो कहते हैं कि हम जो आपको कह रहे हैं वो तो जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई है वही हमको आपको समझा रहे हैं। हम अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से या अपने कोई भी हमारी मान्यता के अनुसार हम ये बात नहीं समझा रहे। तो आप कहेंगे कि मारा मुखमाती परमागम झरे छे, तो ये परमागम यानी अभी वो तो कुछ बोल के ही बताते होंगे ना, तो वो मुनिराज नहीं जानते होंगे भाषा वर्गना का कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन बोले तो बोले कैसा, ख्याल में है ना? ये तो समझने की बात है। उनका कहने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि ये तो जिनवानी में यानी दिव्य ध्वनि में जो बात बताई गई है वही बात हम आपको समझा रहे हैं। यानी ये जो आगे जो बताया ना कि सत्यवाद कोई ने न रुचे तो शू थाय, क्या सत्यवाद है? कि ईश्वर जगत का कर्ता है, ऐसा वो लोग मान रहे कोई, और हम नहीं मान रहे। हम तो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कुछ करता है, तो ये सत्यवाद किसी को न रुचे तो। अभी आप जो कह रहे जैनियों में कर्म ही हमको जो कुछ दुख देता है, सुख देता है, जो कुछ होता है वो कर्म के कारण से होता है, ऐसा मानने वाले दुखी हो जाए, उनको ये बात न रुचे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। पन सत्य तो आज छे, ये देखो स्वामी जी कभी कभी कोई ऐसी बीच में से नई बात डाल देते हैं ना, यानी हमको उसका कनेक्शन लगने में थोड़ा टाइम लगता है। ये सत्यवाद कोई नहीं रुचे तो ये नती शू था, ये सत्यवाद कौन सी है? ये जो ऊपर हमारी जो मिथ्या मान्यता चल रही है कि ईश्वर जगत का करता है, कर्म जगत का करता है, इस तरह से देखो। अगर आपको याद आता होगा तो हमने जब अस्तित्व गुण को देखा था तो अस्तित्व गुण के माध्यम से हमने तीन बातें देखी थी कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, वो पालन करता नहीं है और नष्ट विनाश करने वाला नहीं। वैसे कर्म मेरा करता नहीं है, कर्म रक्षण करता नहीं है, कर्म नाश करता नहीं है, मैं पर का पर मेरा, इस तरह हमने चार बातें देखी थी। तो ये ये बात मतलब हम जो बोलते हैं उसको सिद्ध करते हैं। निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान अने क्रमबद्ध पर्याय आ पांच वात खास समझवा जेवी छे। जे समय जे पर्याय थवानी होय ते पर्याय तेज काले क्रमसर थाय छे। मोतीनी माळामां प्रत्येक मोती पोतपोताना स्थानमां छे, तेम द्रव्यनी पर्याय माळामां प्रत्येक पर्याय पोतपोताना काळ एटले स्थानमां छे। ये जो बात है ना कि मोतीनी माळा, ये बात हमने प्रवचन सार में देखी थी अगर आपको याद होगा तो। यानी क्या कहते हैं, ये जो मोती की माला जो होती है उसके मणि भी क्रम से होते हैं। ये ऊपर वाला जो मोती है नंबर 7 का, वो 17 नंबर का मोती 8 नंबर पे हम नहीं ला सकते, पर लाना हो तो माला तोड़नी पड़ेगी। वैसे ये द्रव्य जो है ना, वो द्रव्य अनेक पर्यायों का बना हुआ है, तो एक पर्याय उठा के दूसरी पर्याय की जगह लावे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। इस तरह ये मोती की माला की वहाँ हमने बात देखी थी। यानी क्या कहना चाहते हैं, मोतीनी माला में प्रत्येक मोती पोतपोताना स्थान में छे, एक क्षेत्र की अपेक्षा से समझाया उन्होंने। तेम द्रव्यनी पर्याय माला में प्रत्येक पर्याय पोतपोताना काल एटले स्थान में छे। जे पर्यायनो जे काल होय त्यारे तेज पर्याय त्यां प्रकट थाय छे, आगळ पाछळ नहीं। आवो निर्णय करवामां पाचे समवाय आवी जाय छे। तो पांच समवाय किस तरह आते हैं यहां भी बताएंगे। पहले पांच समवाय के नाम किसको याद है क्या? हाँ, कौन बताना चाहेगा? हमारे सौभाग्य चंद बताएंगे। हाँ, निमित्त, पुरुषार्थ और काल लब्धि। हाँ हाँ बोलो। अभी यहाँ पर दिए हैं, देख लेते हैं। नहीं नहीं दिए हैं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी पांच समय की बात आने वाली है ना। क्रम भले आपने आगे पीछे किया होगा, यहाँ क्रम जुदा है। यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पांच समवाय एक साथ होते हैं, कोई पहला कोई पीछे ऐसा नहीं, लेकिन बोलने में तो उसका क्रम आएगा। जे समय जे पर्याय थवानी होय तेज समय ते पर्याय प्रकट थई त्या काळ आव्यो। अभी बात ऐसी हुई कि हम शिविर में गए थे ना, तो हमारे कोई रिलेटिव का हमें फोन आया, तो पूछा अरे आप आ गए, तो आप कभी गए कभी? तो मैंने कहा कि भाई फला तारीख को गए, अभी तारीख को आए हैं। क्यों, आपको क्या हो गया? आपको आने का विचार था क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं नहीं, अभी हमारा काल नहीं आया है। मैंने कहा वाह, एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया और इनको काल दिखने लगा। मैंने पूछा काल द्रव्य रूपी है क्या अरूपी है, वो कौन जाने बोले। लोगों को ऐसा लगता है अभी हमारा काल नहीं आया है, तो तेरे को दिखने वाला है कि आ रहा है, चलो अभी तैयार हो जाए। जैसा गाड़ी आ गई तो अपन सामान लेके खड़े हो जाते हैं। सच कहता हूं मैं, तो क्यों नहीं काल आया? नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मेरी गरज है। क्या बोलने का, चुप बैठा मैं। लेकिन बहुत मजा आती, कई कई लोग कुछ नहीं जानते और ऐसे मूर्खता भरी बातें करते हैं और वो समझते कि हमने कैसा उनको चुप बिठाया। अरे काहे का चुप बिठाया? हम ही चुप बैठे क्यों? क्यों, हम जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चुप नहीं बिठा सकता है। ये अभी काल की बात है ना, देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। जे समय जे पर्याय थवानी हो, यानी जब वो पर्याय ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है वही काल लब्धि है। ख्याल में अभी आने वाली है, अभी हमको दिख गई तो फिर हमको जान में आ गया तो वो काल लब्धि आई, ऐसा नहीं है। देखो फिर से पढ़ना कि जे समय जे पर्याय थवानी होए तेज समय ते पर्याय प्रकट थई, क्या हुआ प्रकट थई त्या काल आव्यो, काल आव्यो कहो कि काल लब्धि आई कहो, एक ही बात है। यानी हम तो ऐसा समझते कि अभी जैसा आने वाला है, अभी बादल काले काले हो गए, अभी बारिश आएगी आएगी आएगी, कितने ही टाइम तो आखा दिन काले बादल ऊपर रहते, एक बूंद भी नहीं गिरती है। वो तो बम्बई में तो हम सारे उसे अनुभूत हैं, लेकिन जिस समय बूंद गिरे वो काल लब्धि हो गई, वैसे यहाँ वो प्रकट हुई पर्याय तो वो काल लब्धि है। ऐसा लौकिक में बोले काल पाक्यो न थियो, जो काल पाक्यो न थियो। अभी दूसरा पॉइंट, जे पर्याय थवानी छे तेज थई, यहां पर भी थई वाली बात हुई, यानी 10 नंबर में कोई कार्य होना है तो वह 10 नंबर के पर्याय ही काल लब्धि है, 10 नंबर की पर्याय ही भवितव्य है। और स्वभावना लक्ष्य आवो निर्णय करियो छे एमा स्वभाव आयो, तो स्वभावना लक्ष्य यानी कुछ किसके स्वभावना लक्ष्य के, नहीं जो द्रव्य का स्वभाव है उसकी बात है। ख्याल में है, क्या कहा, अब पुद्गल में कार्य कर हो रहा है तो तुम स्वभाव के अपने स्वभाव में देखोगे पुद्गल के, जानने वाला तो आत्मा है, कार्य जिस द्रव्य में हो रहा है उस द्रव्य का स्वभाव क्या है, हल्का होना भारी होना उष्ण होना ठंडा होना, वह तो वो पुद्गल का स्वभाव है ना। तो कह रहे हैं हाँ, होनहार भी कहा जाता है उसको, काल लब्धि और नियति, सॉरी, और होनहार और भवितव्य एक है, नियति कहो और काल लब्धि कहो। अब क्या कह रहे हैं देखो, तीसरी बात देखी, स्वभावना लक्ष्य आवो निर्णय करवो करियो छे एमा स्वभाव आयो, अने स्वभाव सुन्मुख पर्याय थई एमा पुरुषार्थ आयो। यानी हमने स्वभाव के तरफ देखा ना, वो तब वह पुरुषार्थ कहा जाएगा। यानी पुरुषार्थ कब कहा जाएगा कि जब अपनी पर्याय अपने स्वभाव, यहाँ तो जीव की बात चल रही है तो वहाँ अपनी पर्याय की तरफ दे, अपने स्वभाव की तरफ देखना। तो हमने पुरुषार्थ क्या माना कि ये चीज उठा के फिर ठीक ठाक रखना, सब घर में मेहमान आवे तो चीज जगह जगह पे रखना, या पैसा कमाना, हाँ, या अन्य जो कोई बातें हैं। यानी हम हमारा पुरुषार्थ पर पदार्थों में लगाना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ क्या बताई बात कि अने स्वभाव सन्मुख पर्याय थई एमा पुरुषार्थ आव्यो, याने अपने स्वभाव के तरफ ही अपना ज्ञानोपयोग जाना कि मैं इस स्वभावी हूँ, वही पुरुषार्थ है, उसका अनुभव करना कहो। अने त्यारे कर्मनो अभाव थयो एमा निमित्त आव्यो, आवा क्रमबद्धनो निर्णय करनारनी दृष्टि न्यायक ऊपर होई छे, त्रिकाळी शुद्ध द्रव्य ऊपर जेनी दृष्टि होय छे तेज क्रमबद्ध पर्यायनो क्रमबद्धनो यथार्थ निर्णय करी शके छे। क्या कहा, त्रिकाळी शुद्ध द्रव्य ऊपर जेनी दृष्टि होय छे तेज क्रमबद्धनो यथार्थ निर्णय करी शके। तो अभी हमें निर्णय हुआ है कि नहीं क्रमबद्ध पर्याय का, हाँ मिली भाई, निर्णय हुआ है, यथार्थ निर्णय नहीं है। यथार्थ निर्णय हो जावे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये शुद्ध द्रव्य पर जेनी दृष्टि छे तो हो ही छे, तेज कर्मबद्धनो यथार्थ निर्णय करी शके छे। देखो अभी बहुत स्थूल रूप से अगर हम देखेंगे तो यह हम कब कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कब करते हैं, हम चलते चलते ठेस लग के गिर जावे और यहाँ वहाँ लगे। ये हमारा भाई का लड़का है ना विशाल, वो स्कूटर में से गिर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके मार लग गया, क्या कहूं चाचा ऐसा होना था हो गया, अभी क्या करें। अब वो भी क्रमबद्ध पर्याय की बात कर रहा है, सुनो सुनो। लेकिन हम कब यह निर्णय लेते हैं सुनो, हम यानी वो जो अभी ऐसा कहे हम ठेस रख के गिरे, वो पर्याय होने के बाद, और नजर कहाँ है पर्याय पर है, ये ऐसा ही होना था सो हुआ। अब हमारे घर में या अपने आसपास में कोई मर जावे क्या करें सर, भगवान की इच्छा, उन्होंने बुला लिया, ये कैसे भगवान है हाँ? यानी होने के बाद ये सारा, और जैनी क्या करेंगे, स्वभाव के तरफ दृष्टि रखेंगे और स्वभाव का निर्णय करेंगे, कैसा स्वभाव, कि यह तो ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव ही मैं हूँ, तो सर्वज्ञ क्या करता है, वह तो तीन काल और तीन लोक और तीन काल की बातें जैसी है वैसी एक समय में जानते हैं, ऐसा ज्ञान स्वभावी मैं भी हूँ, तो यह जो पर्याय है वह त्रिकाली द्रव्य को पहले जानने में आई किसके, सर्वज्ञ की, और वैसा मैं हूँ ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव का जिसने निर्णय किया है उसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है। और हम तो पर्याय की तरफ देखते देखते हाँ ये क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, ख्याल में क्या ये फर्क है। मुझे अभी भी याद है अपने यहाँ आने वाली सुशीला बहन पहले कहीं किनके पास जाती थी, तो वहाँ उस व्यक्ति ने कहा था कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था, किने सुशीला बहन को, वो बोलती सर वो एम के छे तमे तो क्रमबद्ध पर्याय एटलो बराबर समझाओ छो कि यथार्थ निर्णय नहीं है। ये बात गले उतरने थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि निर्णय हुआ तो उसको आत्मानुभव होना चाहिए। देखो यहां लिखा है क्या कहते हैं, ये थर्ड लाइन लास्ट थ्री वर्ड्स, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य ऊपर जेनी दृष्टि होय छे तेज कर्मबद्धनो यथार्थ निर्णय करी शके छे, क्योंकि मैं तो ज्ञायक स्वभावी ही हूँ, और ज्ञायक यानी जानन स्वभाव जो है वो क्या करेगा, तो जानेगा, किसको जानेगा, तो सबको जानेगा, तो सबको जानने वाला स्वभाव कैसा है, तो सर्वज्ञ स्वभाव है, तो वो सब जो निश्चित पर्याय है वही तो जानेगा कि नहीं, क्या जो अनिश्चित है उसको जानेगा, तो वो पर्याय की तरफ नजर न जाते हुए वहां दृष्टि न चिपकते हुए स्वद्रव्य पर जिसका जिसका उपयोग चला जाता है उसको वो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है। देखो स्वामी जी को भी कितनी बार पूछते थे, उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछते थे वे, क्या तू सर्वज्ञ को मानता है, ऐसा पूछते थे। अरे क्रमबद्ध पर्याय को सर्वज्ञ की कहां बात आई, तुम बीच बीच में क्या लाते हो, ऐसा वो सबको होता था। अरे पर सर्वज्ञ को जान मानते हो तो मानना कब होगा कि तू स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी ऐसा तूने माना है, क्योंकि मम स्वरूप है सिद्ध समान कहते हो, अरिंत को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानो ऐसा कहते हो, तो फिर, और वहां तो कह रहे कि जो अरिंत को द्रव्य गुण पर्याय से यथार्थतया जानते हो उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका सम्यक तो होता है, तो ये भी तो बात वहां लिखते हैं, तो ये तो निश्चित रूप से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय तो जिसे आत्मानुभूति हुई ऐसे जीव को ही होगा। देखो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य पर जेनी दृष्टि होई छे तेज क्रमबद्ध पर्याय नो यथार्थ निर्णय करी शके छे, क्रमबद्ध जे छे ए तो पर्याय छे, पर्याय ना आश्रय पर्याय नो निर्णय थतो नथी। अब इससे और क्लैरिटी क्या चाहिए, द्रव्य ना आश्रय सम्यक ज्ञान थाय छे, द्रव्य ना आश्रय जे सम्यक ज्ञान थयुं ते क्रमबद्ध पर्याय नु ज्ञान करे छे, पर्याय ना आश्रय क्रमबद्ध नु ज्ञान थतुं नथी। वीरेश भाई बात समझ में आती है, इसमें तो बहुत ही बढ़िया बात समझाई है उन्होंने। आई कहे छे के मिथ्या दर्शन आदि विकारी परिणाम नो उपयोग स्वयं अज्ञानी थईने करता थाय छे। यानी ये कल हमने पूछा था ना, यहाँ मिथ्या दृष्टि को ये मिथ्या दर्शन आदि का कर्ता कहा, वो उस कार्य को करे फिर सम्यक दृष्टि करे क्या नहीं, ऐसा जो पूछा था ना मैंने, तो वहां तो सम्यक दृष्टि तो कभी नहीं करेगा, वो तो मिथ्या दर्शन नहीं करेगा, सम्यक दर्शन करेगा या सम्यक ज्ञान की पर्याय को करेगा। तो वही यहाँ बात बताते कि मिथ्या दर्शन आदि विकारी परिणाम नो उपयोग स्वयं अज्ञानी थईने करता थाय छे, यानी वो अज्ञानी है वही करेगा, जे जे भाव ने पोताना करे ते भाव नो उपयोग करता थाय छे। आ पर्याय रूप उपयोग नी वात छे डॉक्टर साहब। त्रिकाळी द्रव्य स्थित उपयोग तो एनाथी भिन्न छे अने ए तो शुद्ध निरंजन छे। देखो आपने जो प्रश्न पूछा था और उज्ज्वला ने भी बताया था वहां पर कि ये त्रिकाली द्रव्य की बात है यानी आत्मा और उपयोग एक करके गिनाए, वो तो शुद्ध के लिए। अभी यहां जो बात हो रही है वो अज्ञानी की बात चल रही ना, तो वहां तो उपयोग है वो पर्याय की बात है। देखो फिर से पढ़ रहा हूं यही पैराग्राफ। आई कहे छे कि मिथ्या दर्शन आदि विकारी परिणाम नो उपयोग स्वयं अज्ञानी थईने करता थाय छे। एटले ये उपयोग यानी जो त्रिकाली स्वभाव, जे जे भाव ने पोताना करे, यहां आ गई पर्याय, ते भाव नो उपयोग करता थाय छे, आ पर्याय रूप उपयोग नी वात छे। त्रिकाली द्रव्य स्थित उपयोग तो एनाते भिन्न छे, उसको भी उपयोग कहा, पर्याय को भी उपयोग कहा, तो ये जो उपयोग है कैसा, ये तो शुद्ध निरंजन छे, एक छे वो बात आई थी ना पहले। परंतु पर्याय नो जे उपयोग छे ते काले विकार नो करता थाय छे। जड़ कर्म एमा निमित्त छे पण ते विकार नो करता नथी। मिथ्या दर्शन अज्ञान ने रागादि पुण्य पापना भाव रूप जे जे विकार थाय छे ते विकार नो पोते विकार रूप परिणमी ने उपयोग करता थाय छे। ये भी कल बात आई थी मैंने, मतलब उज्ज्वला ने समझाई थी कि जड़ कर्म तो उसमें निमित्त है और वो जो उपयोग हो रहा है वो उपयोग भी ये तीन रूप से जो परिणमित हो रहे हैं, मिथ्या दर्शन अज्ञान और वो, उसमें वो निमित्त है। ये जो पर्याय हो रही है वो अपने स्वयं से हो रही है, ये अलग तरीके से समझाया था आपको। केटली स्पष्ट बात छे भाई, वक्त लईने निवृत्ति लईने आ वातनी समझन करवी जोईए। आई तो कहे छे के आत्मा कर्मना निमित्तथी निवृत्त छे, केम के कर्मना निमित्तथी विकारी परिणाम उत्पन्न थाय छे एम छे नहीं। आहा हा, देखो अभी त्रिकाली उपयोग, ये अभी जो अब स्वभाव उपयोग वाले की बात है, शुद्ध निरंजन चैतन्य मात्र भाव बने एक प्रकार नो छे, तो पन वर्तमान उपयोग वर्तमान पर्याय रूप उपयोग कैसा है, अशुद्ध सांजन अने अनेकपना ने पामतो थको मिथ्यात्व आदि त्रण प्रकार नो थाय छे। ये उपयोग कोई तीन प्रकार से हो गया है ऐसा कहा। अज्ञानी जीव अनेक प्रकारना मिथ्यात्वादी भावने प्राप्त थाय छे, वर्तमान उपयोग छे ते अज्ञानी थयो थको त्रण प्रकारे थईने कर्तापनाने पामे छे, जड़कर्म विकारना कर्तापनाने पामे छे एम नथी। यहां तो परद्रव्य का कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ही सिद्ध कर रहे क्या कहा, जड़ कर्म विकारना करता बने पामे छे एम नथी। पुण्य पाप दया दान विषय वासना इत्यादि जे भाव थाय छे तेमा जड़ कर्म निमित्त छे, पण ते निमित्तना कारणे ए भाव थाय छे एम नथी। अज्ञानी नो उपयोग त्रण प्रकारे थईने कर्तापनाने पामे छे, क्योंकि वो अज्ञानी है ना, अज्ञानी पोते रागनो करता थाय छे। आमा गर्भित पण एम आयवू के ज्ञानी रागनो करता नथी, ज्ञानी तो रागनो ज्ञाता छे, ज्ञानी ने जे राग थाय छे ते रागनो आत्मा करता नथी। भाई आ तो वितरागनो मार्ग छे, समय सार प्रवचन सार आदि शास्त्रों भगवान नी दिव्य ध्वनि नो सार छे, સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જે કહ્યું છે તે અનુસાર ચાર જ્ઞાનના ધની 14 પૂર્વની અંતર્મુહૂર્તમાં રચના કરનારા ગણધરોએ કહ્યું છે તેનો સાર આ શાસ્ત્રોમાં ભર્યો છે. અરે અજ્ઞાની અલ્પજ્ઞ જીવો એમાં પોતાની મતિકલ્પનાથી અર્થ કરે તે કેમ ચાલે? તેમાં જરાય ફેરફાર કરે તો એથી મિથ્યાત્વનો મહાદોષ ઉપજે. પાણી ઉષ્ણ થાય તે પોતાની યોગ્યતાથી થાય છે, અગ્નિથી નહીં. અગ્નિ તેમાં નિમિત્ત છે પણ નિમિત્ત કરતા નથી. સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ દેખીને જે વાસનાના પરિણામ થાય તે વાસનાના પરિણામનો કરતા અજ્ઞાની જીવ પોતે છે. સ્ત્રીનું સુંદર રૂપ તેમાં નિમિત્ત છે પણ નિમિત્તને લઈને વાસનાના પરિણામ થયા નથી. જ્ઞાનાવરણી કર્મને લઈને આ જ્ઞાનની હીની દશા છે એમ નથી. જ્ઞાનની હીની દશા સ્વયં પોતાતી છે અને તેમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નિમિત્ત છે. જીવની જ્ઞાન દર્શનની હીની પર્યાય થાય છે તે ભાવઘાતીના કારણે થાય છે. એ ભાવઘાતી ક્યાં હોતા હૈ ભાઈ? મમ્મી આપ જાણતી હૈ? હા, ભાવ ક્યાં લિખા? દેખો કે જ્ઞાન દર્શનની હીની પર્યાય થાય છે તે ભાવઘાતીના કારણે થાય છે. તો એ ભાવઘાતી અને ક્યાં? મિલી ભાઈ આપ બતા રહે? યાને સ્વયં કે કારણ સે હિ વહ હો રહા હૈ, ઇતની બાત પહેલે ધ્યાન મેં લેના. યાને વહ જો કોઈ હિની દશા જો હુઈ હૈ વો ઉસ સમય કી પર્યાય મેં જો ઉસકી જો યોગ્યતા હૈ ઉસકો ભાવગતિ કા, ઓર દ્રવ્ય ગતિ યાને વો જો કર્મ જો હૈ તો વો તો નિમિત્ત બતાયેંગે અભી. તો યાને જો, હા બોલો બોલો, જો વિકાર રૂપ પરિણમન હો રહા હૈ વો સ્વયં કે કારણ સે હો રહા હૈ, હમારે ભાવ હમારે પરિણામ કો ઘાત રહે, મતલબ પર્યાય કો ઘાત રહે, એસા ઉસમેં જડ કર્મ નિમિત્ત હૈ. હા જી બોલો.
ભાવઘાતી મેં અકેલે મોહ રાગ દ્વેષ કો ક્યો લિયા? જડઘાતી કર્મ કિતને પ્રકાર કે? ઘાતી કર્મ કિતને હૈ? કોણ સે? જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ મોહની અંતરાય, બરોબર? તો એ જડઘાતી કર્મ હૈ. તો ભાવઘાતી કર્મ ભી ઉતને હી હોને ચાહીએ. જ્ઞાન સ્વયં હીન રૂપ પરિણમા એ ઉસકા ભાવઘાતી કર્મ હૈ. અકેલે મોહ રાગ દ્વેષ મે તો વો તો મોહનીય કા, વો તો જડ મોહનીય ઓર ભાવ મોહનીય, વહાં હમ જડ મોહ ઓર ભાવ મોહ કહેતે હી હૈ, યહાં અકેલે મોહ કી બાત નહીં હૈ. અકેલે મિથ્યાત્વ કી મોહ કી બાત નહીં હૈ. ભાવઘાતી કર્મ એને જ્ઞાન સ્વયં અપની યોગ્યતા સે હીન જ્ઞાન રૂપ પરિણમા હૈ વહી ઉસકા ભાવઘાતી કર્મ કહેના ચાહીએ. જડ ઘાતી કર્મ ઓર ભાવ ઘાતી કર્મ હરેક મેં જ લગેગા. વો
દેખો હમ દેખતે હૈ યહાં પર ચોથી લાઇન સે. હા સર,
વો મોહ રૂપ પરિણમે, ભાવ મોહ હો ગયા. વો રાગ દ્વેષ કો ભાવ મોહ કહેંગે, યહાં ભાવ ઘાતી કર્મ કહે રહે હૈ. તો ચાર જડ કર્મ હૈ, જડ ઘાતી કર્મ ચાર હૈ, તો ભાવ ઘાતી કર્મ ભી ચારો મેં લગેગી કે નહીં લગેગી?
એ નિમિત્ત છે.
અબ જૈસે જો સમય દ્રષ્ટિ હૈ ઉસકે મિથ્યા તો નહીં હૈ પરંતુ જ્ઞાન કી હીની દશા હૈ તો વહાં ક્યા કહેંગે હમ? ખ્યાલ હૈ ના, જ્ઞાન કી હીની દશા તો હો રહી, સમ્યક જ્ઞાન તો હૈ પરંતુ કેવલ જ્ઞાન નહીં હૈ તો વો જ્ઞાન કી હીની દશા હૈ. તો જડ મેં હમ દેખેંગે જ્ઞાનાવરણ કર્મ હૈ, ભાવ મેં ક્યા હૈ? જ્ઞાન સ્વયં હીન રૂપ પરિણમ આ રહા હૈ, વો ઉસકા ભાવઘાતી કર્મ કહેંગે.
દેખો યહાં પર ઇધર લિખા હૈ, દેખો ચોથી લાઇન મેં પઢેંગે હમ, પુષ્ટ ક્રમાંક 6 પર ચોથી લાઇન સે. દેખો ક્યા કહે રહે હૈ, જ્ઞાનાવરણીય કર્મને લઈને જ્ઞાનની હીની દશા છે એમ નથી. પહેલે તો નિમિત્ત કો ઉડા દિયા, યાને કર્મ કે કારણ સે હોતા હૈ એસા નહીં હૈ. જ્ઞાનની હીની દશા સ્વયં પોતાતી છે, આવી સ્વયં પોતાતી છે અને તેમાં જ્ઞાનાવરની કર્મ નિમિત્ત છે. જીવની જ્ઞાન દર્શનની હીની પર્યાય થાય છે તે ભાવઘાતીના કારણે થાય છે, દ્રવ્યઘાતી કર્મ એમાં નિમિત્ત છે. તો યહાં જો કોઈ અભી એક એક ગુણ કે હમ અવસ્થા દેખેંગે તો એક એક અવસ્થા વો સ્વયં અપની યોગ્યતા સે હો રહી હૈ, પરદ્રવ્ય કે કારણ સે, સંયોગ સે, નિમિત્ત સે નહીં હો રહી હૈ. યહી બાત યહાં હમે એમ્ફસાઇઝિંગલી બતા રહે અબ તક. ઘાતી કર્મના નિમિત્તથી એમ કથન આવે છે પણ એ તો નિમિત્તનું કથન છે. જળઘાતી કર્મ આત્માની પર્યાયનો ઘાત કરે છે એમ નથી. ભાવઘાતી કર્મથી પોતાની હીની પર્યાય થાય છે, તો જો હીની પર્યાય નહીં થાય તો દ્રવ્યઘાતી કર્મને કેમ નિમિત્ત કહેવામાં આવશે એમ કહે છે. તો ક્યાં કહે તે ભાવઘાતી કર્મથી પોતાની હીની પર્યાય થાય છે તો દ્રવ્યઘાતી કર્મને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય કર્મ નિમિત્ત છે પણ તે ભાવઘાતી કર્મનું કરતા નથી. એટલે ભાવઘાતી કર્મ યાને યહાં ફિર સે સમજના કે જીવ કે પરિણામ, અબ એક એક ગુણ કે પરિણામ અલગ અલગ. અભી દર્શન ગુણ કા જો કોઈ હીન રૂપ સે પરિણમન હો રહા હૈ વો ઉસકે સ્વયં કે કારણ સે, યાને પર્યાય કે કારણ સે, યે લેના, ગુણ કે કારણ સે નહીં. અભી જ્ઞાન મેં હીનતા હૈ વો ઉસ સમય કી પર્યાય કી કારણ સે. અભી આપ કહેંગે મોહ રાગ દ્વેષ, અભી ઉજ્જવલા ને ભી બતાયા, મેં ઓર થોડા આગે ખીંચતા હું. યો બારવે ગુણસ્થાન વર્તી જો જીવ હૈ, ગ્યારવે ગુણસ્થાન વર્તી જીવ હૈ, ઉસકો કિતના મોહ હૈ, કિતના રાગ હૈ, કિતના દ્વેષ હૈ, પૂર્ણ વિતરાગ હૈ ને, જૈસે સિદ્ધોં કે વિતરાગતા હૈ ઉસી ક્વાલિટી કી ઇનકે ભી વિતરાગતા હૈ, ફિર ભી અભી ઉનકે જ્ઞાન દર્શન મેં હીનતા હૈ કે નહીં. જ્ઞાન હૈ, દર્શન હૈ, અબ આગે બઢેંગે તો અંતરાય મેં ભી કોઈ ને કોઈ ખામી હૈ, મતલબ વીર્યગુણ મેં ભી ખામી હૈ, ઓર આગે જાય તો સુખ ભી પરિપૂર્ણ નહીં હૈ, યાને પરિપૂર્ણ યાને અનંત સુખ નહીં હૈ, વહાં તો પૂર્ણ સુખી કહેંગે પણ અનંત સુખ નહીં કહેંગે, ખ્યાલ મેં હૈ ને. તો હમ એસા ઉપચાર સે કહે કે સ્થૂલ રૂપ સે મોહ રાગ દ્વેષ કે કારણ હી યે સારે કર્મ બનતે હૈ, ઓર વો કર્મ કે ઉદય મેં જીવ કી હી ની અવસ્થા હોતી હૈ. યે સારી બાત એક દૂસરે કો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સે હમ જરૂર કહેતે હૈ, લેકિન યહાં તો યે સમજા રહે કે ભાઈ યે જો કુછ આપકી અવસ્થા મેં જો કોઈ હીની દશા હો રહી હૈ વો ઉસ ઉસ પર્યાય કી યોગ્યતા સે હો રહી હૈ, વહાં ના ગુણ ઉસકા કરતા હૈ ના દ્રવ્ય કરતા હૈ. પરદ્રવ્ય કી તો વાત હી છોડો, કરતા અપના કર્મવાદી કી, નિમિત્ત કી, સંયોગ કી, યે બાત યહાં પર અપને કો સમજા રહે. ઓર યે બાત કિતની યથાર્થ હૈ યે અભી હમ આપકો મતલબ ઇસ તરહ સે સમજને કી કોશિશ કર રહે. ભાવાર્થ ઉપરનું પ્રવચન પહેલાં કહ્યું હતું કે જે પરિણમે તે કરતા છે, અહીં જ્ઞાન રૂપ થઈને ઉપયોગ પરિણમ્યો તેથી જે ભાવરૂપે તે પરિણમ્યો તે ભાવનો તેને કરતા કયો, આ રીતે ઉપયોગને કરતા જાણવો. જે પરિણમે તે કરતા છે, વિકાર રૂપે ઉપયોગ પરિણમે છે તેથી ઉપયોગને વિકારનો કરતા કયો, નિમિત્ત કરતા નથી. એ મૂળ વાત યહાં બતાની હૈ. જ્ઞાનાવરણી આદિ કર્મ પરદ્રવ્ય છે તે આત્માની પર્યાયને અડતું એ નથી, કેમ કે આત્માની વિકારી પર્યાય અને કર્મની પર્યાય એ બંને વચ્ચે અત્યંત અભાવ છે, અત્યંતા ભાવ છે. આ શરીરમાં પીડા થાય તે અશાતા વેદનીયના નિમિત્તથી થાય છે, એનો અર્થ શું? શરીરના અવસ્થા તો જે કાળે જે થવાની હોય તે એનાથી થાય છે, તેમાં અશાતાનો ઉદય નિમિત્ત છે, પણ અશાતાના ઉદય શરીરની અવસ્થાનો કરતા નથી. પ્રતિમા તો એ વાત સમજમાં આવતી હૈ. તથા તે વખતે જીવમાં પીડાનો જે અનુભવ થાય છે તેની યોગ્યતાથી સ્વતંત્ર થાય છે. એ અનુભવ યાને યહાં ક્યાં હો રહા હૈ, જ્ઞાન કી પર્યાય હો રહી, જો કુછ જાનને મેં આ રહા હૈ વો વહાં પીડા હો રહી એટલે જ્ઞાન મેં આ રહા હૈ, એસા નહીં. वो ज्ञान का उस रूपी पर नमन होना है। ते वक्ते जीव में पीड़ा नो जे अनुभव थाय छे ते तेनी योग्यता थी स्वतंत्र थाय छे एमां शरीर नु के कर्म नु काई कर्तव्य नथी। आ पैसा आदि सामग्री मळे छे ते शाता वेदनी ना उदय ना निमित्ते मळे छे। त्यां उदय तो निमित्त मात्र छे। पैसा पैसाना कारणे आवे छे। पैसानी आववानी क्रिया थई तेनो शाता वेदनी कर्म नो उदय करता नथी। केम के जे परिणमे ते करता छे। मिथ्यात्वादी रागद्वेष मिथ्यात्वा ने रागद्वेष आदि विकार रूपे उपयोग परिणमे छे माटे ते विकार परिणाम नो उपयोग करता छे। अज्ञान रूपे थईने जे भाव रूप उपयोग परिणमे ते भाव नो उपयोग करता छे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नैति आत्मा करता छे नहीं। तो पन उपयोग ने आत्मा एक वस्तु होवा थी आ गई बात डॉक्टर साहब। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं आत्मा ने पन करता कहेवामां आवे छे। शुद्ध नहीं से वो करता नहीं है, अशुद्ध नहीं से वो करता है, ऐसा कहने में आता है। द्रव्य दृष्टि थी आत्मा रागादि विकारनो करता नथी। द्रव्य स्वभाव विकारनो करता नथी। तेवी रीते द्रव्य दृष्टि जेने थई छे एवा द्रव्य स्वभाव ने अनुभवनारा ज्ञानी रागना करता नथी। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने आत्मा करता नथी। पन उपयोग ने आत्मा एक होवाथी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी आत्मा ने पन करता कहेवामां आवे छे। अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने कहो के अशुद्ध निश्चय ने कहो अथवा व्यवहार ने कहो ए अपेक्षाए आत्मा ने करता कहेवामां आवे छे। अभी अगली गाथा देखिए।
देखो गाथा के ऊपर लिखते हैं अथ आत्मनः त्रिविध परिणाम विकार कर्तृत्वे सति पुद्गल द्रव्यं स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति इति आह। कि आत्मा अभी अभी हमने देखा आत्मा तीन प्रकार के परिणाम विकार का करता है। आत्मा को कहा नहीं वहां उपयोग कहा या आत्मा को ही कहा, एक ही बात है ना
दोनों अपेक्षा से बात।
तो आत्मा को कर्तापना बताया है आत्मन है आत्मा के यानी गुजराती में आत्मा ने त्रण प्रकार ना परिणाम विकार नु कर्तापणु हो त्यारे यानी सती शब्द है कर्तृत्व सती यानी कर्तृत्व होने पर यानी होते हुए यानी जब आत्मा स्वयं तीन प्रकार के विकार रूप परिणमता है ऐसे परिणमते हुए आत्मा की बात है उस समय पुद्गल द्रव्यम स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति तब पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमता है। पहले क्या बताया था कर्म का उदय उसमें निमित्त होने पर भी उपयोग स्वयं तीन रूप परिणमित होता था। अब कहते आत्मा स्वयं तीन रूप परिणमता है तब कर्म भी स्वयं पुद्गल भी स्वयं कर्म रूप परिणमता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने पर भी उसमें कर्ता कर्म संबंध है नहीं इस बात को यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि पूर्व में भी कर्म का निमित्त था परंतु आत्मा स्वयं अपने उपादान से अज्ञानी जीव तीन रूप परिणमता था। अब वो तीन रूप परिणमते हुए हम देखते हैं ना उसके निमित्त से कर्म का बंध हुआ परंतु वो निमित्त भले हो उसकी कोई ना नहीं है परंतु कर्म जैने पुद्गल जो है वो कर्म रूप जो परिणमता है वो स्वयं परिणमता है। आत्मा ने कर्म को बांधा छोड़ा कुछ उसमें हेरफार किया ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। भाषा होगी वैसी क्योंकि शास्त्र की भाषा है निमित्त से कथन होता है परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता क्योंकि शास्त्र को पढ़कर ही जो और मिथ्या बुद्धि जिसकी है वो और पक्की कर लेता है। देखो इसको कर्म को ही कहा ना सब इसलिए यहाँ अभी हम गाथा पढ़ेंगे। जम कुण दि भाव मादा कत्ता सो हो दितस भावस कम्मत्तम परिणमदे तम्मिसयं पोगलं दौवं यम करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् जे भाव जीव करे हरे जीवते हनो
कर्ता बने कर्थातता पुद्गल स्वयं चा कर्म रूपे परिणमे जे भाव जीव करे हरे जीवते हनो कर्ता बने कर्तातता पुद्गल स्वयं चा कर्म रूपे परिणमे। देखो गाथार्थ हम पढ़ते हैं, आत्मा यम भावम जे भावने करोति एटले करे छे तस्य भावस्य ते भावनो सह एटले ते एटले आत्मा करता भवति एटले थाय छे। यानी जिस भाव रूप जो आत्मा परिणमता है उस रूप वह होता है, उसका कर्ता होता है। ते कर्ता तथा तस्मिन ते कर्ता तथा पुद्गलम पर द्रव्यम पुद्गल द्रव्य स्वयं पोतानी मेळे कर्मत्वम कर्मपणे परिणमते परिणमे छे। देखो यहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं, यहाँ दो द्रव्यों से एक कार्य नहीं होता है वगैरह, जो बात अपने पहले हमने देखी थी कि एक ही पर्याय का दो कर्ता नहीं होता है या एक द्रव्य दो द्रव्यों का कार्य करे ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव राग द्वेष रूप या मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप स्वयं परिणमे, तो उस समय कर्म में बनते तो जरूर है लेकिन वह कर्म बंधने की जो क्रिया हो रही है वह पुद्गल द्रव्य की है, उसका कर्ता यह जीव नहीं है। बस यही सीधी और सादी बात है और इतनी छोटी सी बात है। क्या कहा देखो गाथा में केवल गुजराती पढ़ता हूँ, आत्मा जे भावने करे छे ते भावनो ते कर्ता थाय छे। और क्या कहते हैं ते कर्ता थता यानी वह तो अपने ही पर्याय का करता है, उस वक्त पुद्गल द्रव्य पोतानी मेळे कर्मपणे परिणमे छे यानि उसके पांच समवाय उसके लिए है, जीव के पांच समवाय अपने के लिए है मतलब जीव के लिए है, तो जीव के कारण से वह पुद्गल कर्म बंधा है या जीव उसको बांधता है ऐसी बात बिल्कुल है नहीं। यानी यहाँ दो द्रव्यों में भिन्नता बता रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है वो तो पुद्गल तो जड़ है ना, उसके तो ज्ञान कहाँ है, तो वो कैसा बनता होगा, ये जीव को ज्ञान है तो वही बांधता होगा। तो हमारी जो मान्यता है कि हम कर्म को मानते हैं तो जैसा हमने बोया है वैसा हमें फल पाना पड़ेगा, ऐसे भी बोलते हैं ना। आज स्कूटर रिपेयर को मैं गया था तो वहाँ वो एक सरदार था मैकेनिक, तो वो बोला कि तुम बबूल बोएगा तो उसको आम के फल कैसे आएंगे, तो मोटर मैकेनिक बोलो तो बोला सही बात है हा? कि उसको कहना था कि तुम जैसे परिणाम करोगे वैसा तुमको फल मिलने वाला है। तो हमको तो कितना अच्छा लगा, अरे वाह सरदार हो के भी ऐसी बात करता है, वो तो बिल्कुल मिथ्या बात है। क्यों कि भाई तू परिणाम कर सकता है, कर्मों में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, कर्म जो जिस रूप परिणमन करेंगे वो स्वयं अपने रूप से कर्म रूप हो जाएंगे लेकिन वो तुझे फल देंगे ऐसी कभी नहीं बात होगी। कहेंगे तो जरूर चार प्रकार के बंध होते हैं, हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अमुक बंधन, तमुक बंध। अरे वो सारा निमित्त का कथन है, हाँ? ख्याल में? यहाँ तो कहते हैं कि दो द्रव्यों में, अभी पहले हमने देखा था अत्यंत अभाव है, लेकिन ऐसा उपचार से जरूर कहा जाता है। और वैसा ही हम मानते हैं तो हम गर्त में उतरते हैं, यानी कैसा मिथ्यात्व रूपी खड्डे में घुस जाते हैं। इसलिए बार बार द्रव्यानुयोग कार्यकारी क्यों है, तो ये बात हमें पहले उसको सही रूप से हम समझेंगे तो जो निमित्त का कथन रूप जो करणानुयोग है वो समझने में आसानी हो जाती है। यानी नहीं तो जिसने द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं किया है और सिर्फ करणानुयोग पढ़ेगा वो तो ऐसा ही मानेगा, जीव ने ऐसे कर्म बांधे, उसके इतने प्रकार हो गए, फिर उसका ये हो गया ना वो हो गया। तो यहाँ तो कहते हैं नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने से हो रहा है, पर से नहीं है। तो कहते हैं ना, पुद्गल द्रव्य पोतानी मेले कर्म रूपे परिणमे छे, कर्मपणे परिणमे छे। वो जीव ने भाव किए, अभी हमारी मम्मी बोली ना, पोते राग द्वेष करे तो एवं कर्म बंधा है ना इन्हें, भाई वो तो कहें जरूर, कहेंगे शास्त्र में ऐसा कथन जरूर आएगा, लेकिन मूल बात हमारे ख्याल में होनी चाहिए कि कर्म हमें कुछ नहीं करते हो ना हम कर्म को कुछ करते हैं। अभी बताएं इन्हें अड़ियो न थी, अभी ऐसा शब्द आया था ना, छुआ तक नहीं कर्म को इस जीव ने, हाँ क्या लिखा था, अड़तु ये न थी, यानी यही बात बताते हैं। अब आगे की जो बात है टीका आदि वो हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सवाणी मस्तकणमो सदादित हो। मिली भाई।